It's over 31st p.m.
रतन ठाकुर को अपने आश्रम से निकाल दिया। किसने निकाला? तुम अभी भजन करने के लिए योग्य नहीं हो। जब नाम करते हो तो समझे लीजिए स्वयं राधा और कृष्ण है, और नाम करते समय तन नाम रूप चरितादि सुकृत नाम क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठ प्रजे तदानुरागी जनानुरागी का। ठीक समझो जी, ये राधा कृष्ण के स्वरूप है, और करते करते वही नाम ही तुमको सारी लीलाओं सारी परिकरों के साथ तुम्हारे हृदय में प्रकटित हो जाएंगे। जब एक कृषक उनके पास आया, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दिया, ओ तुम नाम का स्वरूप अभी तक नहीं जान सका, ओ गृहस्थ जीवन में रहो, अपने घर रहो, जाओ यहीं से सामाजिक सेवा भी करना, वहीं से अपना भजन करना, हमारे आश्रम में मेरे पास रहने योग्य नहीं है, निकाल दो। तात्पर्य क्या? नाम करो, नाम को साक्षात हरे कृष्ण राधिका जी और कृष्ण शब्द, और नाम करते समय एकाग्र होकर के करो, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होगा मन विक्षिप्त रहेगा, सेवा नहीं होगी। इसलिए उनको निकाल तो दिया किंतु नरोत्तम ठाकुर जाकर वहां पर कुछ विग्रह स्थापित किए अपने पूर्वाश्रम में, और वहीं से प्रचार करना आरंभ किया, रेने हाटी इत्यादि सुर बनाया। बहुत ही जब सुंदर रूप से कीर्तन करते थे राधा कृष्ण, और महाप्रभु अपने परिकरों के साथ आकर के नृत्य करने लगते थे, इतना सुंदर करते थे। इस तरह से अंतिम समय में उनको पैरालिसिस रोग हो गया। लोगों का ये तो ब्राह्मणों को हरिनाम दीक्षा देता है, इसलिए इसकी दुर्गति हुई। उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु आप इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, ये तो वैष्णव धर्म कलंकित हो जाएगा, आप कृपा करके स्वस्थ हो जाएगी। दूसरे दिन स्वस्थ होकर के गंगा नदी में स्नान करने के लिए लोगों ने देखा, ये क्या, कल तक जो अपंग आदमी था और ये चलने लगा, तब उनकी भूल भ्रांति दूर हुई। फिर वही लोग भी उनसे हरिनाम और दीक्षा लिया। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही संक्षेप में इन्होंने बदला। कुछ लोग शास्त्रार्थ के लिए उनके पास आए, ब्राह्मण सबका गुरु है, वैष्णव लाओ की कोई जाति पाति नहीं, इसलिए ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। बहुत से उस समय बांग्लादेश के बड़े बड़े विद्वान इस मार्ग वहां पर आए। जब उस गांव में आए जहां पर सा गांव था खेतुरी, वहां आए बाजार में एक दुकान पर गए कुछ सब्जी लेने के, तो उन्होंने संस्कृत में उसे बातचीत किया, आपको क्या चाहिए, संस्कृत भाषा में, और शास्त्रार्थ में उनको वहीं पर पढ़ा। कोई लकड़ी लेने गया रसोई करने के लिए, वहीं पर लकड़ी जो बेच रहा था वो भी संस्कृत में उनसे भाषा से बातचीत करके और उनको परास्त कर दिया। जब वो एक जगह सम्मिलित हुए तो अरे जिनके ये सब लकड़ी बेचने वाले चावल बेचने वाले संस्कृत के इतना महाविद्वान और वैष्णव लोग हैं, तो वो कैसा नरोत्तम होगा बस वहीं से छोड़कर के भाग से। उसी की परंपरा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्हीं की परंपरा, नरोत्तम ठाकुर की परंपरा। बचपन में बड़े मेधावी थे, संस्कृत पढ़ते ही आरंभ में उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, बिंदु, किरण, कला, एनिया वैष्णव पना, जो भक्ति रसामृत सिंधु क्या बिंदु उज्ज्वल नील मणि किरण और भगवतामृत कणा, इसको नहीं पढ़ा, इसका अनुशीलन नहीं किया वो वैष्णव ने। सर्वसार शब्दों में 3 ही पुस्तकों में छोटी छोटी में सर सहज संस्कृत भाषा में सभी लोग पढ़ सकते हैं, उन्होंने लिखा है, मैंने उन लोगों के लिए लिखा, और उसमें सारे रूप गोस्वामी के विचारों को भर दिया। आप लोग उसे देखेंगे पढ़ेंगे। जब वृंदावन में आए तो उनको गुरु जी ने कहा, भाई ऐसे नहीं जाओ, अपनी स्त्री से आदेश ले करके तब गए घर, अपनी स्त्री के पास में गए, सारी रात उनको कृष्ण कथा बोली। जब सवेरा हो गया तो स्त्री से बोले, अब मुझे आदेश तो मैं वृंदावन जाऊं। उनकी हरि कथाओं से इतनी प्रभावित हुई, जो उनको कहा जैसे आप कृपा करके जाइए, हमारा भी मंगल कल्याण को ऐसा उपाय किया। तब आप लोग जानते हैं किस प्रकार से संप्रदाय की रक्षा उन्होंने की। पहले तो हमारे उनको उपाधि दी गई थी महामहोपाध्याय, वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी का पारकीय भाव जो हमारे संप्रदाय का प्राण है कुछ लुप्त तो होने लगा। जीव गोस्वामी जी ने कुछ अनाधिकारी शिष्यों को, जैसे कि यह राग मार्ग नष्ट न हो जाए इसलिए अधिकारी नहीं समझ करके उनको स्वकीय भाव में भजन करने के लिए कहा। गोपियां कृष्ण की पार्कीय नहीं थी बल्कि विवाहित स्त्रियां, राधा जी विवाहित स्त्रियां। भागवत के कुछ श्लोकों का कुछ अर्थ उलट उलट करके उनके लिए वो शिक्षा दी। गोपाल चंपू में भी उन्होंने ऐसा किया। इस प्रकार से जब वो लुप्त होने लगा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी आकर उनका प्रथम यही कार्य कि अपने सारे ग्रंथों में उज्ज्वल मणि की टीका में, श्रीमद् भागवत की टीकाओं में अपने गोविंद क्या हाँ कृष्ण भावना ग्रंथों में उन्होंने पारकीय भाव की स्थापना की। इसे कुछ यहाँ के वैष्णव लोग उनके ऊपर में बड़े असंतुष्ट हुए और उनका प्राण लेने के लिए सोचा। वो लोग एक झाड़ी में छिप गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रोज वृंदावन की परिक्रमा करते। उस समय वृंदावन में बंद ही बंद था, एक जगह खना कुछ जंगल था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वहां पर आएंगे उस समय उनको मार डाले। 4-5 आदमी ये पार्थिव भाव की स्थापना कर रहा है, स्वकीय भाव को दूर कर रहा, इसलिए मारने के लिए वहां पर आकर के छिप गए। उस छिपे में थे, इतने में देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ गए, बस एकदम तैयार हो गए। थोड़ी देर के बाद में देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं है, एक परम किशोरी सुंदरी सर्वगुण संपन्ना गोपी उधर से जाने चली। जाने के बाद में लोगों ने कहा, जी ये कौन, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखा और ये देखा। फिर उन्होंने लाली लाली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा, बस उनके तरफ में मुस्कुरा करके अंतर ध्यान हो गई और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में अब ये दिखा रही इतना महिमा इनकी, इनका सर्वथा गोपी स्वरूप है। बस उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा। इन्होंने ही पंडित विद्याभूषण को जयपुर में भेजा था, झांसी संप्रदाय के और दूसरे संप्रदाय के आचार्यों से कुछ बातचीत हुआ। उन्होंने राजा से कहा करके गोविंद जी के यहां से राधा जी का विग्रह हटा दिया था और कहा कि गौड़ीय वैष्णव कोई संप्रदाय नहीं है किसी का अंतर्गत। उस समय राजा ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को निवेदन किया। इन्होंने कहा कि मैं तो संकल्प ले चुका हूं, वृद्धावस्था हूं, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता, हमारा शिष्य ये बल दे दीजिए, हम मिल जाएगा। वहां पर गए और जाकर के उनकी सभा हुई, सभा ने उनके सारे विचारों को खंडन कर दिया और राधा जी का की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातें तो ठीक है किंतु तुम्हारे संप्रदाय में ब्रह्म सूत्र का कोई भाष्य नहीं है, इसे तुमको हम संप्रदाय नहीं स्वीकार करते। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में श्रीमद् भागवत को ही श्रीमद् भागवत का की व्याख्या कहा जाता है, उसका अकृत्रिम भाष्य कहा जाता है, इसलिए हम लोगों ने ब्रह्म सूत्र का कोई अलग से भाष्य नहीं बनाया, ब्रह्म सूत्र का श्रीमद् भागवत ही उसका व्याख्या है। तब उन्होंने कहा जैसे भी हो हम लोग नहीं माने। अच्छा तो हमें एक दिन का समय, 7 दिन का, बस लोग राधा गोविंद जी के यहां गए, ध्यान लगाया, गोविंद जी प्रकट बोले जी मैं बोल रहा हूं तुम लिख के जाओ। तो गोविंद जी ने कहा और उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य बहुत शीघ्र ही उसी एक रात में उन्होंने लिखा और फिर जाकर के उन लोगों को दिखलाया, देख करके चमत्कारित हो गए। एक रात में इतना सुंदर भाष्य लिखा, बस उन्होंने संप्रदाय को स्वीकार किया। दूसरे दिन राजा से कह करके राधा जी की विग्रह भी गोविंद जी के पास में जयपुर में रख दिया गया। इस प्रकार से पूजा समझा चले, देखने में छोटे पतले दुबले किंतु धुरंधर विद्वान थे। गोविंद का भाष्य ही नहीं बल्कि भाष्य पीठक एक ग्रंथ लिखा, जो पहले भाष्य पीठक पढ़ेगा तब ब्रह्म सूत्र का अर्थ समझ सकता है, उन्होंने किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गीता की टीका लिखी, बहुत रसिक था। और इन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने तत्व पर उन्होंने उसके आभास से लिखा। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कितने ग्रंथ लिखे हैं इसका आदि अंत नहीं, और मैंने सबका ही अनुवाद हिंदी में मैंने किया। दो एक ग्रंथ कृष्ण भावनामृत हम अभी नहीं छू सके, लेकिन सब ग्रंथों का आप लोग पठन पाठन करेंगे तब मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जीवन का ही सबसे अधिक छाप मेरी जीवन में है। मैं जो कुछ बोलता हूं अधिकांश सब कुछ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के ग्रंथों और टीकाओं के आधार पर होता है और सारे विश्व में विचार। तो वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की समाधि पीठ भी राधा गोपालानंद जी के मठ में है। वो उस विग्रह की प्रतिष्ठा हमारे इन्होंने ही की थी। और वहीं पर महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जो गोवर्धन की शिला दी थी, छोटी सी वो शिला भी वहां पर है। गुंजामाला जिसको राधा जी माना जाता है वो भी वहीं पर है। तो आप लोग सब गए, दर्शन किया, उनके विचारों को सुना, आपका जीवन भी धन्य हो और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के भावों को ग्रहण करके भजन में अग्रसर हो।
ज्ञान विज्ञान से ज्ञान लेने से मारेगा तुरंत अभी है ना दस महीने शुरू रोने रोने सुशील गुरुदेव टोल्ड अस दैट लोकनाथ गोस्वामी वन टाइम वन फार्मर के ठाकुर वॉज चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा दैट टाइम नरोत्तम दास ठाकुर ऑफर दैट फार्मर सम वॉटर एंड दैट टाइम लोकनाथ गोस्वामी टोल्ड हिज डिसाइपल दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड
टू भजन बट यू कैन से समथिंग
व्हाई बिकॉज़
ओके यू कैन से
द होली नेम ऑफ कृष्णा So, Ramana Goswami told him that you should go to your home. You should go to your home because you don't have full faith in the holy name of Krishna. So, when we are chanting the holy name of Krishna, we should understand that Hare Krishna. Hare is Radha and Krishna is Krishna. So, Radha Krishna. We are serving Radha Krishna together. When we are chanting the holy name of Krishna. So then Narottam Das Thakur, he did the Vigraha Prachar. He established the deities in Bengal, Manipur and other areas. And he wrote very powerful kirtans, like Prem Bhakti Chandrika and others. When he would perform kirtan, Radha Krishna themselves, along with Sri Chaitanya Mahaprabhu and all their associates would manifest during his kirtan. And they would participate in the kirtan. But though the body of Narottam Das Thakur was fully transcendental, he manifested the pastime of being paralyzed at the end of his life. So seeing that he was paralyzed, some people began to criticize him because Narottam Das Thakur was not from a Brahmin family. However, he had many Brahmin disciples. So therefore people told him that because he initiated Brahmins, Krishna has punished him. And therefore he has been paralyzed. So his disciples began to lament. They said, alas, our guru has been severely criticized like this. So they complained to Narottam Das Thakur. And then Narottam Das Thakur exhibited another pastime. He immediately got up and went to the Ganges River to bathe. So then all the people who were criticizing Narottam Das Thakur, their mouths were shut tight. So actually one time some Brahmanas, they came, they wanted to debate with Srila Narottam Das Thakur. They wanted to tell that Brahmanas are superior than Vaishnavas. And so they had this pride of dharma. But as Mahaprabhu has said, Kima Vipra Kiva Nasishitra Kena, Jai Krishna Dharmita Se Guru Vaj. No one is Brahman. Mahaprabhu also told, Naam Vipra Nachatra Patir Naam Vaishnava Shudra. Nova Vardhi Nachatra Patir Vanas Poyati Vaj. So, when these people who were from Brahmin family, they came there to debate. So what happened that some disciples of Narottam Das Thakur, they took the dresses of different shopkeepers. So when they came to the shop, when these Brahmanas came to the shop, these disciples of Narottam Das Thakur, who were in disguise, replied to their questions in Sanskrit language, and they defeated all these so-called Brahmanas. So when they went to purchase, when they went to the market, wood market, they saw that even the woodcutters and the people selling wood, they were also speaking in Sanskrit language. Seeing this, these Brahmanas were wonderstruck, and they thought that if the people who live in the village of Narottam Das Thakur are so learned, so scholarly, who can speak in Sanskrit and know all the scriptures, and all the scriptures cover to cover, what will be the condition of Narottam Das Thakur? He must be a very exalted scholar. So they all ran away before even seeing the face of Sri Narottam Das Thakur. So Sri Narottam Das Thakur had a very excellent disciple. His name was Srila Vishwanath Chakri Thakur. He was a Shiksha disciple of Sri Narottam Das Thakur. He was very scholarly and very expert in Sanskrit. So he has written 3 books, Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Ujjwala Nilamani Kiran and Bhagavatamrita Kana. So it has been said that these 3 books represent
Vaishnavism. If anyone has studied these three books, it means he has understood the Buddha of Srila Rupa Goswami. And if one has not studied these three books, then he has not understood what Vaishnavism is. So Srila Gurudev has translated these books into the Hindi language. And from Hindi, they have been translated to English and other languages. So we should take advantage of these books. So, in very simple, straightforward, and very clear language, Srila Vishwanatha Thakur has expressed the thoughts of Srila Rupa Goswami in his books, and they are very easy to understand. Srila Vishwanatha Thakur, he went to Vrindavan to perform bhajan, but his guru told him that you cannot perform bhajan in Vrindavan, first go and seek permission of your wife before you come to Vrindavan. So he went, he returned to Bengal, and he went to his wife, and for entire night he told us very sweet Krishna Katha. Hearing the sweet pastimes of Lord Krishna from the lips of Vishwanatha Thakur, by the morning time his wife was fully convinced that she should let her husband go to Vrindavan. And his wife told that you can go to Vrindavan, and I think you should also pray that something auspicious will happen by the mercy of Krishna in my life. So he protected Vishwanatha Thakur. He is actually not different from Rupa Goswami. So he is actually, he is called Maha Mahopadhyaya. And he protected the original stream of Vichardhara, the original stream of thoughts in our line. So Rupa Goswami, has, in his books, has established Parakya Bhava between Radha and Krishna. And, but Sri Jiva Goswami, who was a disciple of Sri Rupa Goswami, he wanted to protect this Parakya Bhava from the people who are not qualified. And to save people from committing offense at the lotus feet of Sri Radha Krishna, for the unqualified people, he gave some meanings of some verses of Srimad Bhagavatam, the meanings which were actually suitable that would represent the Svakya mood of Sri Radha Krishna. So, but he actually, also in Gopal Champu, and also on his commentary in Ujjwala Nilamani, Jiva Goswami has some places express the Svakya Bhava so that the people who are not qualified or the disciples who are not qualified would understand that Radha Krishna's pastimes were Sakya. However, Srila Vishwanatha Thakur very clearly in his commentaries and all his books such as Sri Krishna Bhavanamrut and other books express that the love between Sri Radha Krishna is extramarital, that is actually Parakya mood. So one time, some people in Vrindavan were very much angered to hear that Sri Vishwanatha Thakur has expressed that love between Radha Krishna is Parakya. So therefore they wanted to get rid of it. Every day Sri Vishwanatha Thakur would do the Panchakosi Parikrama of Vrindavan Dham. And one time he was passing on the Parikrama Marg, and there was some dense forest there. And five or six people were hidden there, and they wanted to kill Vishwanatha Thakur. So as soon as they saw that this elderly Vaishnava is coming, they appeared in front of him. But immediately he vanished from there, and they saw a small girl there, very small, a tail on 20-year old. Teenage girl they saw there. So they asked that girl, "Lali, Lali, I have seen that elderly Vaishnava was passing from here." And she said, "No, I have come here by the order of my Swamini from Javad. My Swamini in Javad, I have come here to pluck flowers." And after that, she disappeared and Vishwanatha Thakur was there. They immediately realized that this is a Mahatma who is actually living in the Gopi there. So they immediately fell down at his feet and asked for his forgiveness. Another greatest contribution of Sri Vishwanatha Thakur apart from his books was his disciple, Sri Baladev Vidyabhushan. So, Sri Baladev Vidyabhushan was the greatest scholar of Gaudiya Vaishnavism, and he was sent to Ghattagatti in Jaipur to protect our Sampradaya. Ghattagatti, actually some Ramana Sampradaya people, some Ramana Sampradaya scholars had convinced the king that Srimati Radhika was not married to Krishna. Nowhere in the scripture it has been written that Radhika was married to Krishna. So therefore it is proper to take away the deity of Srimati Radhika from the left hand side of Sri Krishna. So, Sri Vishwanatha Thakur was executing the pastime of becoming old. So therefore he sent his disciple, commander-in-chief of Gaudiya Vaishnavism, Sri Baladev Vidyabhushan to Ghattagatti. Baladev Vidyabhushan was very thin in his appearance. However, he was very strong in his learning. So there he established, he cut all the arguments of Ramana Sampradaya scholars and he established that Sri Radhika is the Swarup Shakti of Krishna and she must be on the left hand side of Krishna. So later on, this Ramana Sampradaya devotees, they told that in your Sampradaya there is no commentary on Brahma Sutra, Vedanta Sutra. So then Vande Vidya Bhushan Prabhu replied that according to the authority of Garuda Puran, that the commentary, the spotless commentary on Vedanta Sutra is Srimad Bhagavatam itself. And in Gaudiya Sampradaya, they accept Bhagavatam as the commentary on Vedanta Sutra. However, they were not satisfied. So then he pleaded to Lord Govinda. He said, please give me the time of 7 days. So they gave him the time of 7 days. And he went in front of the deity of Govinda and requested Govinda to manifest this commentary on Vedanta Sutra. And in one night, Govinda dictated and Vande Vidya Bhushan Prabhu wrote down very beautiful commentary on Vedanta Sutra called Govinda Vashya. And then all these Ramana Sampradaya scholars, they understood that Vande Vidya Bhushan Prabhu is very empowered and they accepted their defeat and Srimati Radhika was established on the left hand side. He wrote a book called Vashya Pitak. This Vashya Pitak book, if someone will study, then you will understand Brahma Sutra very nice. So Vishwanathacharya Thakur has written a commentary on Bhagavad Gita called Saratam Srinitika. And that is very excellent Rasavichar. And we are proud that our Gurudev, our Srila Gurudev, has written, has translated this commentary into the Hindi language. And it has also been translated in English language. See, Vande Vidya Bhushan wrote a commentary on Bhagavad Gita, which is based on Tattva Vichar. So Srila Gurudev is ordering us that we should study the books of Srila Vishwanathacharya Thakur. Srila Gurudev has said that he has translated many books of almost all the books of Srila Vishwanathacharya Thakur except for Sri Krishna Bhavanamrita, for which we are not qualified yet. So we went to the Radha Gokulananda temple. There is the Samadhi Peet of Srila Vishwanathacharya Thakur and also there is a Govardhan Shila which was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Raghunath Das Goswami, Govardhan Shila and Kunja Mala. That Govardhan Shila is also present there in Radha Gokulananda temple.
Brihad Bhagavatamrutam. बहुत तक हमने साधु संघ की महिमा बतलाई, क्षण भर का साधु संघ हमारे जीवन को बदल देता है और राधा कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति देने वाला है। बिना वैष्णव के चरणों में आप सिक्त हुए शुद्ध साधुओं के चरणों में कि पदफुली से स्नान किए बिना कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलती है, इसका हमने श्री नरूप सनातन गोस्वामी के श्रीमद भागवती और दूसरे दूसरे श्लोकों से हमने बताया। बृहद भगवतामृत दो खंडों में है, इसको महाराज परीक्षित मृत्यु के निकट आने पर अपनी मैया उत्तरा को सुना रहे हैं। जब यह उपाख्यान दोनों समाप्त हो गए तो वे श्रीमद् भागवत के चुने हुए गोप और गोपियों से संबंधित कृष्ण के रसात्मक भावों को के जितने भी श्लोक हैं उनका वो पाठ करने लगे और उसकी व्याख्या करने। जैमिनी जी ये परीक्षित के लड़के जनमेजय जी को ये कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने अपनी मैया को अंतिम समय में भागवत के परम रसात्मक श्लोकों का जो श्रवण कराया था मुझे सुनाओ। जैमिनी जी कह रहे हैं कि उन्हीं श्लोकों को मैं उच्चारण करता हुआ विश्व में सब जगह घूमता हूं और मैं सारे दुखों को भूल जाता हूँ, मैं तुमको ये चीजें बतला रहा हूँ। यह कह करके उन श्लोकों को जिसको रसायन कहते हैं, भागवत के जितने भी अच्छे अच्छे गोप और गोपियों से संबंधित श्लोक हैं, इसमें वर्णन किया है। पहले सबसे पहले वे ब्रह्म संहिता के दो तीन श्लोक पहले बतला रहे हैं। मैया को कह रहे हैं और मैं आप लोगों को कहता हूं, गोलोक में हम लोग आप लोगों को ले चलना चाहते हैं, सब लोगों को। तो जहां पर जाएंगे तो उसकी रूपरेखा तो जाननी चाहिए कि वहां पर क्या है, नहीं है, कैसा है स्थान। इसलिए परीक्षित भी अपनी मैया से गोलोक का वर्णन कर रहे हैं कि गोलोक कैसा है, कृष्ण अपने परिकरों के साथ में कैसी लीलाएं करते हैं, वहां पर जाकर के तुम क्या करोगे, कैसी सेवा करोगे। तो मैं भी उसी का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूं, जहां पर हमारा गंतव्य स्थान है वो कैसा है, कृष्ण कैसी कैसी दिव्य लीलाएं अपने परिकरों के साथ में करते हैं, उनके वो परिकर कैसे हैं, उनको पहले ब्रह्म संहिता से आपको पहले बतला रहा हूं, जो कि परीक्षित महाराज जी ने अपने मैया को बताया। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय, अनंत चिन्मय रस क्या है, उन्नत उज्जवल पार्थिय रस ही आनंद चिन्मय रस है। उसके द्वारा प्रतिभा, उस भाव में, उन्नत उज्जवल भाव में जो विभोर रहती हैं, जो कृष्ण के रूप के समान है, निज रूप तया कलाती, कृष्ण जैसे हैं, उनकी काय व्यूहा गोपियां क्या है, राधिका जी की काय व्यूहा है, और राधिका जी क्या है, कृष्ण ही है, उनके बाम अंग, उनका बाम अंग, उनकी शक्ति हलादरी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, क्या अंतरंगा शक्ति है, वो कृष्ण से कभी भी इधर उधर नहीं। तो चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्ता ये गोपियां हैं, हलादरी शक्ति रूपा श्री राधा जी उनकी काय भी रूपा सखियों के साथ में, अखिलात्मभूत समस्त प्राणियों के अंतर्यामी रूप रहने पर भी गोलोक में पृथक रूप से उन गोपियों के साथ में जो उनकी कलाएं हैं, उनके साथ में नित्य क्रीड़ा विलास में सब समय निमग्न है, उस गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी का है। इसलिए ये गोलोक धाम कैसा है, कहते हैं सनातन गोस्वामी जी, गोलोक महात्म का है। गोलोक माने जहां पर गो 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 का गोपी गोपत्स इत्यादि निवास करते हैं, उस धाम। यहां पर पहले एक शंका उठाई गई है कि गोलोक इस ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं है और वहीं पर वो कौन कामधेनु सुरभि गाभी रहती है। इसीलिए सनातन गोस्वामी ब्रह्म संहिता के उन विचारों को लेकर के कहते हैं कि नहीं, जहां पर गो गोपी गोवत्स और गोपियां रहती हैं विशेष करके, वह जो गोलोक धाम है वो पृथ्वी की तो बात क्या, ब्रह्मांड से भी ऊपर, शिवलोक से भी ऊपर, वैकुंठ से भी ऊपर, रामलोक से भी ऊपर, द्वारका से भी ऊपर, मथुरा से भी ऊपर वो धाम है, वहां पर रहते हैं और उनके परिवार कृष्ण के परिवार वहां पर रहते हैं। परिकर ये गोप और विशेष करके गोपियां, गोपियां कौन है, निज रूप तया कलापी, कृष्ण के अनुरूप ही है क्योंकि राधिका जी उनकी अंतरंगा महाभाव स्वरूप उनकी काय रूप है, राधा जी कल्पलता है और गोपियां उसकी क्या है, पल्लव पुष्प और पत्तियां, उनके बिना राधा कृष्ण की कोई भी शोभा नहीं, इसलिए उनका सारा परिवार है। उस गोलोक में इन सब परिवारों के सहित रहकर कितनी लीलाएं करते हैं उसका वर्णन हम लोग सवेरे कुछ कुछ कर किया है, तो वहां पर निवास करते हैं। वो गोलोक धाम हम लोगों का गंतव्य स्थान है, वो कैसा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नीचे से, गोलोक धामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरिधाम तेश तेश तेते प्रभाव निचया विहितास्तेन गोविंदवादि पुरुषम ब्रह्मा। नीचे से कह रहे हैं देवी देवी धाम, ये देवी धाम है, इसके बाद में महेश, ब्रह्मांड के बाद में शिवलोक है और शिवलोक से ऊपर हरिधाम वैकुंठ है और उससे ऊपर ये गोलोक वृंदावन धाम है, जहां पर करोड़ों करोड़ों स्वर की गायें हैं जिनसे महाक्षीर सागर निरंतर मरता रहता है। ये गायें मत समझो कि हमारी गायें हैं, यहां कामधेनु है, जो कुछ मांगो सभी कुछ दे सकती है और उनसे ही दूधों से फिर समुद्र बढ़ता है। वहां पर भूत भविष्य काल नहीं है, सब वर्तमान काल, यहां पर वर्तमान काल नहीं है। अभी जो मैंने कहा वो भूत, जो नहीं कहा वो वर्तमान है, इसलिए जगत में वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं है। और वहां पर भूत और भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान है, इसकी कल्पना हम लोग इस संसारिक दिमाग से नहीं कर सकते, अखंड नित्य काल है। इसलिए आधा पलक निमेश के समान भूतकाल वहां नहीं, इतना भी भूतकाल नहीं, मैं इसी श्वेत ताब्दी का भजन करता हूं। ओ, इसी पृथ्वी पर उसको महात्मा लोग गोलोक के नाम से जानते हैं और क्या, वहां पर खीर समुद्र बहता है, वृक्ष क्या है, कल्प कर्म है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस तरह से वहां पर सब कुछ अलौकिक व्यापार है। अब ये सब गुरु की महिमा बतला करके फिर बतला रहे हैं। अब पुण्यापट हो गुढ़ा पुराण पुरुषा पद चित्र मल्य गा पाल पड़े गरीबा।
Therefore, in this Sri Brihad Bhagavata Samhita, there is a most extensive description of the glories of Sadhusanga. By Sadhusanga, the directions of one's life will be completely changed, and one will ultimately achieve prema to the feet of Sri Radha and Krishna. Without completely bathing oneself in the dust of a pure devotee, the dust from the lotus feet of a pure devotee, there is never any attainment of the Supreme Lord. Therefore, this Brihat Bhagavatamrita is two sections. One section is where Parikshit described the essence of the Srimad Bhagavatam from which he had heard from Sri Sukadeva Goswami to his mother, Uttaradeva. There he has selected the main slogans describing the relationship between Krishna and his associates. Sri Janmani Rishi has asked from the son of Parikshit, Sri Janmijaya, please describe the essence of the relationship between Radha and Krishna and the gopis and gopis from which you heard from your father. In other words, describe the essence of the Srimad Bhagavatam. Therefore, the essence of that is given by Sri Sanatana Goswami in this Bhakti Rasayana. Gurudev says, I want to take you there to Goloka Vrindavan. But before we go there, we should have some description how it is, what is awaiting for us there. Otherwise, when you go there, what will you do? There should be some clear conception of what seva you will perform there. Therefore, I am describing that essence. The essence of Krishna's past with his associates. Also, how are those associates? What is their sarup? Therefore, we have collected some verses from the Sri Brahma Samhita spoken by Lord Brahmaji. Ananda Chinmaya Rasa Prapathavithavas Taveda Eja Nivarupa Kala Biha Praloka Eva Nivasapta Akilamatma Bhutto Govindamari Purusham Tamahambhajana. How are the gopis? They are endowed with Parikya Ras. Their sarup is the same, their rupa, their form is the same as Krishna's. Their sarup, sorry. Who are the gopis? They are the Kai Vyuha, the non-different expansions of Srimati Radhika. And who is Radhika? She is Krishna herself. She is Krishna himself. Srimati Radhika is Krishna's Antaranga Shakti, or Krishna's internal potency. Therefore, those devotees are therefore that Krishna who is always absorbed in Leela. In Goloka Vrindavan, Goloka Dham, I worship him. Govindam eva, Govindam adipurusham tamaham pajami. Therefore, what is Golok Dham, where these associates and Sri Krishna reside? Golok. Lok means planet or residing place of the gopis, the gopas, the cowherd boys, and the gold, the cows. Therefore, one may arise, a doubt may arise in the mind of someone. There is a Goloka in this world. When Indra wanted to beg forgiveness from Krishna, he went and begged Surabhi Gai to come from there. Therefore, one Goloka is in this material world, where the cow, the Surabhi cows reside. Is it the same place? is Goloka Vrindavan in this universe? Then Sri Sanatana Goswami, he reconciled us. No. Where the gopis and the gopas reside, that is Goloka Vrindavan. Goloka Dham. They were what to speak of not being on this earth planet. Goloka Dham is not even within this universe. It is not even within Vaikuntha. It is not found even on the planet of Lord Ram, or in Mathura, or Dwarka. It is completely beyond all of these. And in that Goloka Dham, Krishna with his own family and personal associates eternally reside there. And who are the gopis? They are Radharani's Kaivyuha, non-different expansions. They are not different than Radhika, and Radhika is not different than Krishna. Srimati Radhika is, what is her surup? She is Mahabhav surup. Her body is composed of Mahabhav. Radhika surup Krishna Premakalpalata. Tarasaki Gan Palat Putrapata. Srimati Radhika is described to be the wish-fulfilling vine of Mahabhav. And the other gopis are simply like flowers, twigs, and leaves on that wish-fulfilling vine. It means non-different expansions. Without the Sakis, there is no beauty in the pastime of Radha and Krishna. There are so many leelas performed there, and in the morning time we are discussing just one drop of them. We should know that this Goloka Dham is our ultimate abode and our real home. Then where is it situated? See, Brahmaji says, Goloka Namni Nijadamni Talichatasya. It is beyond this Devi Dham. It is beyond the abode of Mahadev Shiva. It is even above Haridham Vaikuntha. It is situated above all of these things. And Krishna is the presiding deity of that Goloka Dham, Tamaham Bhajami. I wish to worship him. Therefore, the Surabhi cows, from the milk of the Surabhi cows has come the milk ocean. From the milk of the Surabhi cows has come the milk ocean. But the cows in Goloka Vrindavan are not ordinary cows of this world. They are not even like Surabhi cows. They are in fact Kamadhenus. Kamadhenus are cows which can fulfill any desire at all. Therefore, the Goloka Dham, the residence of Krishna, is beyond even the Goloka Dham where the Surabhi cows reside on the bank of the milk ocean. In that Goloka Dham, there is no time at all. There is no past or no future. There is only Nitya Bhartaman Kala, eternally present time. Gurudev says, for example, what I'm speaking now has just gone into past tense. But that is not so there. There is no past, no future. Of course, we cannot understand this Goloka Dham or this situation simply by mental speculation. Therefore, because it is beyond the mind and senses, it is called Golok. What to speak of the cows being Kamadhenus? Even the trees are not like this world. The trees are all Kalpavriksha, wish-fulfilling trees.
जो क्षीर सागर का दूध है वो कामधेनु गायों से है या सुरभि ये कह रहे थे सुरभि गाय से है पर मेरा ऐसा विचार है कि आपने कहा था जो घोड़ों में कामधेनु गाय है उनका दूध से क्षीर सागर का दूध
यहाँ पर तो ऐसा ही है वहां पर जो गायें हैं अनंत गायें हैं और गाय का दूध भी अनंत है इसलिए क्षीर समुद्र का महाशय निकालना कोई बात नहीं है यहाँ तक कहा गया है उनकी तो बात दूर है जो सोदा जी के स्तन से जो दूर निकला है वो भी इसलिए ये सभी बातें ठीक है
Srila Gurudev is clarifying that the milk of Kheer Sagar, where Kheera Drishay Vishnu is there, that comes from the milk of cow residing in Goloka Vrindavan, like Kamadhenu, etc.
यहाँ तक कहा है गोलोक में कृष्ण ही एकमात्र कांत है और जितनी गोपियां हैं वो लक्ष्मी से भी लक्ष्मी है सभी वृक्ष चिन्मय है कल्पतरु और भूमि चिंतामणि है, वहां की एक एक धूलि कण है चिंतामणि, माने जो कुछ कहो वही कुछ दे दे, और वहां का जल ही जितना जल है वो सब अमृत है, वहां पर बोलना भी गान है, जो कुछ बोलती है गोपियां और कृष्ण वो सब गान है, उनका चलना ही नृत्य है, जो चलती है वो सब नृत्य है, और बंसी प्रिय सखी है कृष्ण की, वहां पर ज्योति करोड़ करोड़ सूर्यों से भी अधिक कृष्ण की अंगों से जो कांति निकलती है वो वहां पर कांति है, और वो कैसी है चिदानंदमयी वो है, वहां पर रसगंध इत्यादि चित पदार्थ और स्वाद लिखे हैं, करें पुण्यावत पुण्यावत प्रतिकूल है कृष्ण नंदगांव से बलदेव प्रभु जी के साथ अक्रूर के लाए जाने पर आए, प्रातः काल में रंगशाला में प्रवेश किया, कुबल्या हाथी महाबलवान उनको मारा, रंगशाला में प्रवेश किया, चारु मस्तक तार ठोक करके उनको पकड़ करके अखाड़े में खींच लिया। कृष्ण ने कहा हम तो बालक हैं और तुम लोग पहाड़ जैसे पर्वत मन लो, हम अपने संपयस्कों से ही मल्ल क्रीड़ा करें, अरे तुम छोटी उम्र का नहीं है, पुतना को मारने वाले अपासुर बकासुर को मारने वाले साधारण नहीं हो, हम राजा का मनोविरोध करेंगे और खैंक करके लड़ेंगे। उस समय वहां उपस्थित थी मथुरा की जादव की राजकुमारियां, उनकी पत्नियां बड़ी दुखी थी, इस सभा में न्याय हो रहा है, एक छोटे से बालक से महाबल से ये युद्ध हो रहा है, यहाँ पर अन्याय हो रहा है, राजा भी इसका अनुमोदन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो रहेगा उसको अधर्म लगेगा। ओहो वृंदावन ही धन्य है, प्रतिभूमि धन्य है, वहां पर गोपियां गो कृष्ण को प्रसन्न मुद्रा में गोचार करते हुए बंसी बजाते हुए नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हुए रास इत्यादि करते हुए देख रहे हैं। हम दुर्भागा कृष्ण को इस समय में चारु मस्तक जैसे योद्धा उनको प्राण लेने के लिए उनसे लड़ रहे हैं, अन्याय हो रहा है। ओ तब वही पर करें ओहो प्रतिभूमि धन्य है, कैसे धन्य है, यहां पर जादवों के साथ में कृष्ण बंसी नहीं धारण कर सकते, मयूर मुकुट धारण नहीं कर सकते, अपने को नंद नंदन नहीं कर सकते यशोदा नंदन, और वो पात्रों के साथ में स्वच्छंद गति से क्रीड़ा नहीं कर सकते, गोपियों के साथ में जिस प्रकार से रास इत्यादि किया वो यहां पर मथुरा में संभव पर नहीं है। यहां पर इसलिए नीचे ही ब्रजभूमि वहां के चराचर धन्य है, ब्रज भुवो यहां पर बहुवचन है, भुवो भुवो गौरव के लिए यहां पर उसका प्रयोग हुआ, भू पुण्यापथ ब्रज भूवो भू प्राणी मात्र के लिए, वृंदावन के जो प्राणी मात्र है गोल बलता इत्यादि गोपियों की तो बात ही क्या, शिला कास्ट भी ब्रजभूमि में जो कुछ है वो कृष्ण विभिन्न प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते हुए भ्रमण करते हैं। पैर में जूती नहीं लेते, खाली पैर अपने ध्वजा और अंकुश इत्यादि 19 चिन्हों से लक्षित चरणों से ब्रजभूमि में सर्वचरण करते हैं। इस सभा को धिक्कार है, यहां पर कृष्ण को मारने की चेष्टा हो रही है, जिसके सभासद कृष्ण को पराजित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः ब्रजभूमि ही परम धन्य है, जहां पर कृष्ण स्वच्छंद रूप से सभी लीलाओं को करते हैं। अथवा यहां के नागर श्रेष्ठ क्षत्रिय जादों से ब्रज का सचेतन प्रपंच ही परम धन्य है। यहां के जादों से वहां का एक तीर्ण गुल्म लता भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण को वो सम्मान करते हैं और यहां पर मारने की चेष्टा हो रही है, अंगुली से दिखा करके मार रहे हैं। चतिको पृथक गर्गाचार्य इत्यादि के वचन और प्रमाण के अनुसार में कृष्ण इस स्थान के प्रभु हैं, ईश्वर हैं। अतएव यहां पर जो कृष्ण आए हैं तो मधुपुर ही धन्य है, क्योंकि यही तो पराक्रम है। इसलिए कृष्ण जब मथुरापुर में आए तो मथुरापुर भी धन्य होनी चाहिए। ओ, ऐसा हो सकता है। तथापि ब्रज और ब्रजभूमि और ब्रज में जितने चराचर हैं वही धन्य है, क्योंकि कृष्ण पुराण पुरुष, पुराण माने आदि पुरुष, और बार बार अनेक रूप से सभी के हृदय में बास करते हैं अनुभवी रूप में। और ऐसे होकर के भी शिव जी, रमा, महालक्ष्मी इनकी सब समय पूजा करते हैं, और इतना होने पर भी वे ब्रज में मनुष्य के बालक रूप में, अबोध बालक के रूप में विचरण करते हैं, गौवा चराते हैं, गंवार जैसा गौवा चराते हैं, किंतु मनुष्य वेश में आए हैं, छिप कर बूढ़ा निर्लिंग पुरुष है, पुराण पुरुष है, जिसको पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया है। अथवा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से कंस को वंचना करने के लिए अपने वैभव को भी प्रकाश किया। कृष्ण का कैसा प्रभाव है उसको अभी कृष्ण नहीं कर रहे, पीछे करेंगे। कब? जब नीचे से मंच से कूदकर बहुत ऊंचाई पर रंग मंच पर जहां कंस बैठा है, सिंह की तरह उछल करके जाएंगे, चोटी पकड़ करके गिरा देते उसके छाती के ऊपर, तब कंस समझेगा, समझने का अवकाश नहीं रहेगा, मारा जाएगा। वहां पर किंतु यहां पर ये लीलाएं संभव नहीं है ब्रज में, यहां मथुरापुरी में। क्या? मथुरापुरी में कुंज है, निकुंज वन है, जहां पर वो लीला करेंगे, जहां पर उच्चारण करेंगे वो वन है, जहां पर कृष्ण क्रीड़ा करेंगे बलदेव जी के साथ, और फिर सबलम भविष्य इत्यादि सिद्धार्थ गोस्वामी के व्याख्या अनुसार बल माने सैन्य, अर्थात तो अपने सहचर गो और गो बालकों के साथ में गोचारण करते हैं। ये गो कौन है? गाय का क्या है? श्रुतियां हैं गाय के रूप में है, उन श्रुतियों का पालन करके रक्षा करके जगत को रक्षा करते हैं, विश्व को मोहित करने वाली बेणुगा की और राष्ट्र क्रीड़ा यहां पर होती है। मथुरापुरी में यह सब संभव नहीं है। भवात्या
श्रुति स्मृति के अर्थों में अनुरक्त ये क्षत्रिय कृष्ण को पुराण पुरुष समझते हैं, साक्षात परब्रह्म मथुरा के उद्धव इत्यादि, और ब्रज में कोई उनको उस रूप में नहीं जानता, अपने बालक के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में। यशोदा मैया उनको अपना पुत्र समझती है, बांधती है, डराती धमकाती है। मथुरा में ये सब लीलाएं संभव पर नहीं है। इस प्रकार से कह रहे हैं कृष्ण ने जिस प्रकार अपने प्रेमी भक्तों के साथ में ब्रज में लीलाएं की हैं, वैसे जादों के साथ में लीला करना कभी भी संभव पर नहीं है। यदि संभव भी हो तो तथापि वन्य वेश जो कृष्ण का है वो कैसे मथुरा में से, द्वारका में कहां से संभव होगा। यदि वैसा हो भी जाए तथापि राज ऐश्वर्य मथुरा में और द्वारका में गोचारण कैसे होगा। इधर द्वारकाधीश है, गोचारण करेंगे, रथिया हाथ में लेंगे, गैयों के पीछे पीछे जाएंगे, ये सब लीलाएं नहीं है। यदि गोस्त राज्य के अधिपति होने से वह लीला भी संभव हो तो बलराम जी के साथ निरंतर संग नहीं हो सकता, कि अपने अपने कर्तव्य पूरा में लग जाते हैं और ब्रज में एक साथ में रहकर के सारी लीलाएं करते हैं। उनका मधुर वेणु वादन भी वहां पर संभव नहीं हो सकता। रास लीला की बात बहुत दूर की बात। इस प्रकार से गोपियां ब्रज की और ब्रज की समस्त गोपियों की और गोपों की सबकी प्रशंसा कर रही हैं, और तभी हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जहां कृष्ण लड़ रहे हैं शत्रु उन्हें मारने की चेष्टा कर रहे हैं वहां पर कृष्ण को देख रहे हैं गोपियां, और वहां के चक्रवासी सब धन्य है जो कृष्ण को उन्मुक्त अवस्था में दर्शन करते करें। इनकी भाषा समझेंगे
land
इट इज चिंतामणि. चिंतामणि मीन्स विच कैन फुलफिल योर ऑल विशेस. देयर डिजायर स्टोन. वाटर इज नेक्टर. स्पीच इज सॉन्ग. मूवमेंट इज वॉकिंग इज एज इफ डांस. एंड बंसी इज कृष्णा फ्रेंड सखी. एंड एवरीथिंग इज देयर चिदानंद. दिस इज एटर्नल. एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट देयर दे आर सर्विंग कृष्णा. कृष्णा वॉज टेकन टू मथुरा बाई अक्रूर. एंड देयर अक्रूर when he was taken to Akrur by Akrur in Mathura and Krishna is in that arena at that time these ladies are saying we should get up from here and leave this place. The place of Braj is Shrest. That is the superior thing. Why? Because that place is the place where Krishna is using peacock feather and he is having flute in his hand and Krishna is walking there barefooted. He has 19 different auspicious marks beneath his feet and all those marks are present in the land of Braj. This is the speciality of Braj. Here in the assembly of Yadav, Krishna cannot live like this. Krishna is here like a king. There even a smaller thing like a straw, creeper, everything is honoring and serving Krishna. But here this Janur Mushrik and Kans and other people, they want to kill Krishna. So there is no any comparison between this place and Braj. And another point was put forth here that can Krishna perform Ras dance in Mathura? No. There is no space for Krishna, no scope for Krishna to perform Ras dance in Mathura. There is no place where Krishna go for cow breaking in Mathura. Krishna cannot play on flute in Mathura. Everyone has honorable relation with Krishna. They worship Krishna. But in Braj, Krishna is taken as a friend, as son, as their lover. No one accepts Krishna as their Pran Purush means worship. There is so much difference. There is no any Kund in Mathura. There is no any cow grazing facility in Mathura. Who are these cows? Srila Gurudev is explaining. They are verses of Shrutiya, our scriptures. Krishna is looking after all these scriptures in the form of cows. And hence, Krishna is protecting whole universe and our Prithvi also. These Kshatriya, Yadavs are Kshatriya, Uddhav is Kshatriya. They consider Krishna as one of his their Kshatriya family member, but also they consider him as God. They worship him. But in Braj there is no worshipping of Krishna. Krishna performs so many sweet pastimes in Braj, which is not possible here. This place is full of Raj Aishwarya. Krishna lives there in a royal state. Therefore, he cannot perform all those activities which he was performing in Braj. All the dancers and everyone of Braj, very fortunate, they are comparing this place
आई एम आउट ऑफ फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म सो फॉरगिव माई